तौर पर पेश किया गया।
This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. Russian political dissident Alexei Navalny is hospitalized in Berlin after being flown there today from Siberia on an ambulance aircraft. German doctors had traveled to the city of Omsk yesterday to evacuate Navalny, a longtime opponent of Russian President Vladimir Putin. The 44-year-old Navalny, a campaigner against corruption, collapsed on a flight to Moscow Thursday after drinking tea widely believed by his allies to have been laced with poison. After first saying he could not be evacuated because of his condition, and after Navalny's wife appealed to the Kremlin to intervene, the chief of the Siberian hospital relented, and Alexei Navalny at this hour is a patient at Berlin's Charité Hospital. Navalny backers who arranged the rescue flight say his condition is stable but worrying. South Korea says it's held talks in the city of Busan with a top Chinese diplomat, Yang Jiechi, a member of the Communist Party Politburo. Centered on trade, nuclear issues, and the response to the coronavirus, the talks involved the first South Korean visit by a high-level Beijing official since the pandemic erupted in China late last year. The two countries resumed exchanges last month when Seoul sent a ranking diplomat to China for a bilateral economic meeting. Two tropical storms expected to become hurricanes are headed for the Gulf of Mexico coast of the United States and should strengthen over the Gulf's warm waters at the same time. It is a rare weather event that could cause massive damage as the storms make landfall. The National Weather Service says there have never been two hurricanes in the U.S. Gulf simultaneously. The official word is that both current systems look on track to remain separate, but that any interaction between the two could heighten their intensity. The United States says it's suspending military cooperation with the African nation of Mali in response to the overthrow of President Ibrahim Boubacar Keïta. The ousting of Keïta this week has dismayed Mali's international partners, who fear it could further destabilize the former French colony, which is already battling a militant Islamist threat. This is VOA News. The six-member Gulf Cooperation Council today welcomed a ceasefire announcement in Libya and called on all parties to adhere to it. The aim, said the council, is to reach a permanent and comprehensive solution to the fighting in the North African nation. Libya's internationally recognized government in Tripoli announced the ceasefire yesterday, and the leader of a rival parliament in eastern Libya also appealed for a halt to hostilities. South Africa's confirmed COVID-19 cases today surpassed 600,000, the highest number on the African continent. Despite imposing one of the world's toughest lockdowns at the end of March, when it had only a few hundred cases, South Africa has since seen a surge in infections. The South Africa figures from Johns Hopkins University, some 603,000 cases and close to 13,000 deaths. The worldwide COVID numbers are closing in on 23 million, with fatalities moving up from 800,000. Here in the U.S., 5.6 million people have fallen ill, while the virus has killed 175,000 plus. Brazil is the next on the list of victims. The death toll there now tops 113,000, with a case count of 3.5 million. The hardest hit city is Manaus, which has lost 23,000 lives to the virus. Brazilian President Jair Bolsonaro has consistently refused to support lockdowns aimed at stemming the spread of the disease. South Korea says it's once again banning large gatherings, closing beaches, shutting down nightclubs and churches, and removing spectators from sports events. All of this in the face of new coronavirus outbreaks. For the ninth straight day, South Korea has reported triple-digit increases in case numbers, most traced to the area in and around Seoul. Cases in South Korea total 17,000, with 309 deaths. Australia's second most populous state, Victoria, reported 13 new coronavirus deaths in the past 24-hour period, but health authorities say new infections remain below 200 for the second consecutive day. Australia has seen 24,600 COVID cases with a loss of 485 lives. The UN nuclear watchdog's chief, Rafael Grossi, will make his first trip to Iran in that role. That according to Iran's ambassador to the International Atomic Energy Agency, who says on Twitter, quote, "We hope this visit will lead to reinforced mutual cooperation. The two sides currently are in a standoff over access to a pair of Iranian sites." The newest Ebola outbreak in the Western Democratic Republic of Congo has infected 100 people and taken nearly half their lives. The latest cluster of cases was declared on June 1st in the city of Bandundu with 1 million people. That was just before Congo declared the end of a previous outbreak in the east, which had dragged on for 2 years. More news online at voanews.com for your convenience. There is also an easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خصوصی ریڈیو پروگرام، یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ جیسا کہ ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کے اسکول اور تعلیمی اداروں کو ستمبر میں کھولے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کووڈ 19 کے دوران کئی ماہ تک گھروں میں محدود ہو کر رہنے والے ان طالب علموں، خاص طور پر اسکول کے بچوں کی ذہنی حالت پر کیا اثر پڑا، وہ کس قسم کی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوئے، اور اب جب وہ اسکولوں کے کھلنے پر دوبارہ اسکول جائیں گے تو کس ذہنی کیفیت کے ساتھ جائیں گے، کن نفسیاتی مسائل کو ساتھ لے کر جائیں گے، اور ایسے بچوں کو اسکول میں اور تعلیم کے لیے دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ اسلام آباد سے ایک ٹراما تھراپسٹ ہیں اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں جو اسکولوں میں کنسلٹنسیز کرتی ہیں، اور نام ہے ان کا ڈاکٹر عائزہ یزدانی۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عائزہ یزدانی صاحبہ۔
وعلیکم السلام یاسمین، بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ اس موقع پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے لیے۔
تو ڈاکٹر عائزہ، یہ بتائیے کہ کیا COVID-19 کسی بھی انداز میں بچوں کے لیے کوئی ٹراما کی سچویشن ہے؟
دیکھیں، ٹراما تو اس وقت ہوتا ہے اگر اس کو، کیونکہ بچوں کی ہم بات کریں نا، تو اگر گھر میں پیرنٹس نے ایک اتنا لیول سٹریس کا بنایا ہوا ہے، اتنا ایک سچویشن بنائی ہوئی ہے جس میں کہ بھائی ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، ایک ہم کہتے ہیں نا ہائی انزائٹی لیول بنائی ہو، مثلاً باہر نہیں جانا، ماسک کے بغیر نہیں جانا، اچھا اسپرے کر رہے ہیں، پھر بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک نارمل لیول پہ کرنے کے آپ میں اس میں ایک پریشانی نہیں ہوتی اگر نہ ہوئے تو، ٹھیک ہے۔ تو جن گھروں میں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اس ٹائم کو جتنا نارمل ہو کے گزارنے کی، ٹھیک ہے ایک پریشانی آئی ہے، ہم احتیاط کریں اور یہ تدابیر فالو کریں، تو وہ بچوں میں نہ سٹریس آئے گا نہ ٹراما آئے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ کر لیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو مدرز، ینگ مدرز ایسی ہیں اسپیشلی جو کہ بہت کانشیس ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، یا جن گھر میں ان کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، بزرگ ہیں، تو وہاں پہ ایک بہت، میں نے دیکھا ایک ہائپ بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت سٹریس کی جو لیول ہے نا بہت زیادہ گئی ہے کہ بالکل ایسے نہیں کرنا کہ جیسے پتہ نہیں ایک دم کچھ بہت کچھ ہو جائے گا۔ وہاں پہ ان لوگوں کو ذرا پرابلم ہوگی جیسے جیسے وہ نارمل ورلڈ میں آنا شروع ہوگی۔
تو آپ کیا کہیں گی کہ اس وقت جو بچے ہیں وہ کس لیول کے، یعنی عام بچے جو ہیں وہ اس وقت کس لیول کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور کس قسم کے مسائل ان کو درپیش ہیں جبکہ وہ گھروں میں بند ہیں؟
دیکھیے، جب گھروں میں بچے بند ہوئے نا، ایک تو ہمارے گھر بھی اس طرح کے ہیں کہ اگر چھوٹے ہیں تو یہ اور کھیلنے کی اپرچونیٹیز باہر نہیں ہیں، ویسے بھی نہیں ہوتی، اب شاید اور بھی محدود ہوگی، تو بچے کمپیوٹر پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ پھر جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ رہا ہے وہ ایسا رہا ہے کہ بچوں کے پاس کوئی پرائیویٹ اسپیس نہیں رہی ہے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پوری گرمیوں کی چھٹیاں بھی آن لائن کلاسز ہوتی رہی ہیں، اسکولس چلتے رہے ہیں، مدرس کو میں نے دیکھا ہے جو کہ ٹیچرس بھی ہیں، تو کسی کو ٹائم آف نہیں ملا۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں بڑا اسٹرانگ ٹرینڈ جو پچھلے 2-3 سالوں سے بنتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بریک لینا، اسٹرکچرڈ ہالیڈیز لینا، کہ جی اچھا اب جون جولائی کا گرمیوں کا مہینہ آ گیا، اب آپ چھٹیاں لے لیں، آپ آف لے لیں، وہ ہم نے ختم کر دیا۔ ہم سمر اسکول شروع کر دیتے ہیں تو بچوں کو ہم ریسٹ نہیں کرنے دیتے۔ اسی طرح کووڈ میں پیچھے ہوا کہ جو آن لائن تھا، جس کو آپ دیکھیں ٹیچرس جو خواتین تھیں یا دوسرے ٹیچرس تھے، ان کو تھریٹ یہ تھا کہ ہماری نوکری چلی جائے گی اگر ہم نہیں کوآپریٹ کریں گے، تو اس لحاظ سے ٹیچرس بھی میں کہتی ہوں فرنٹ لائن پہ آئے ہیں، انہوں نے بھی ڈاکٹرز کی طرح ہی بچوں کے لیے، اس طرح اپنے روزگار کے لیے بھی اور پڑھانے کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ بچوں میں اب یہی ہوا ہے کہ وہ آن لائن گیمز بہت زیادہ کھیلتے ہیں، تو وہ آپ سمجھے بس اب وہ کمپیوٹر کے ہی زیادہ تر ہو کے رہ گئے، تو ان کی جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، یہاں پہ ایک بڑا فرق آئے گا ان کی زندگی میں یاسمین، کہ وہ اتنے زیادہ کمپیوٹرز میں محو ہو گئے ہیں کہ جو لوگوں سے، دیکھیں آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، تو یہ اسکلز ہوتی ہیں، ان کی سکلز میں خاطر ہاں فرق آئے گا, اس جنریشن میں آئے گا.
اچھا, تو اس کے علاوہ جو نفسیاتی جو پرابلمس ہیں وہ انگزائٹی یا کچھ ڈپریشن, کچھ یہ بھی واقعات سامنے آئے یا آ رہے ہیں؟
جی جی یہ آ رہے ہیں, یہ اس طرح آ رہے ہیں کہ دیکھیں کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا, نارمل لائف جیسے گزرتی تھی نا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں جیسے ہم تنہائی پسند تھے, میرے کافی کیسز ایسے تھے جس میں تنہائی پسند والے لوگ تھے, اب وہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں جاتے تھے, ٹھیک ہے, دے ہیڈ اے چوائس کہ جی آج میں نے لوگوں کو نہیں ملنا, میں نے یہاں نہیں جانا. اب جب سے لاک ڈاؤن ہوا نا تو ہم گھروں میں بند ہو گئے, اب ایک آپ کو نا ایک پابندی لگ گئی کہ نہیں جی اب آپ نہیں جانا, تو وہ اپنے گھر میں بہت غیر محتاط وہ ہو گئے, غیر محفوظ ہو گئے کہ جی کہ اب تو کرونا جیسے ہمارے گھر کے اندر آ جائے گا, ہم کیا کریں گے. یہ جو ہماری چار دیواری ہے, ایک تو ان کو یہ بڑا اسے خوف آیا نا, تو ان لوگوں کو یہاں سے پریشانی, گھبراہٹ, نیند ان کی اڑ گئی, ان کی بھوک اڑ گئی, ان کی جو غصہ آ گیا یا ڈپریشن کی طرف چلے گئے, یہ ڈفرینٹ ایموشنل جو ان کی تھی نا یہ لوگوں میں آئی ہے. ایک تو یہ ایشو ہوا ہے کہ کیونکہ کئی دفعہ تو دیکھیں یہ ایسے لوگ تھے جن کو پتا بھی نہیں تھا ان کو ایسی عادتیں ہیں یا ریکوائر ایشوز ہیں ان کے ساتھ, تو لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کو جو ان کی چیزیں آزمائی ہوئی نہیں تھی وہ آزمائی گئی, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس میں وہ ابھر کے پھر آئیے. گھر اگر زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے تھے تو زیادہ مدت کے لیے فیملی کو اکٹھے رہنا, لیکن بڑی بریک مل جاتی ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ باہر جاتا ہے, وہ اپنا ادھر سے اپنا دن گزار کے آتا ہے, آنے جانے میں گھر کا روٹین ہوتا ہے, مدر کو بریک ملتی ہے, بچوں کو اپنا اسپیس ملتا ہے. اب جب سب ایک دوسرے کی نظر میں آ گئے تو یہ اتنی زیادہ مائکرو مینجمنٹ ہوئی ہے کہ کچھ فیملیز جو اس کو احسن طریقے سے نبھا سکیں ہیں, جو WHO نے کہا کہ آپ فیملی ٹائم کریں, ایکسرسائز مل کے کریں یا الگ الگ ایکسرسائز کریں, ریلیکس کریں, اچھا کھانا کھائیں, جنہوں نے وہ کام کیا وہ ٹھیک رہے, انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک مینج کر. لیکن جہاں پہ پرسنل اسپیس لوگوں کی انکروچ ہوئی ہے, یعنی کہ ایک بچے کو جو اگر بہت والد ڈانٹتے ہیں, اچھا بچوں کو بہت مارا بھی جاتا ہے گھروں میں انفارچونیٹلی, تو اب وہ بات بات میں ان کو ٹوکا بھی جاتا ہے, شاید مارا بھی جاتا ہے, یہ مسئلے تھوڑے سے بڑے ہیں, خاصے بڑے ہیں.
ٹھیک ہے, اور اب جب بچہ ان مسائل کے ساتھ یا ان اس ٹینشن کے ساتھ یا اس اسٹریس فل سچویشن کے ساتھ اب کچھ عرصے کے بعد اسکولوں میں جانے لگیں گے ایسے بچے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وہ اپنی وہ پڑھائی جو اسکولوں میں دی جائے گی اس کو اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں گے, یا ان کی کچھ ایسی نفسیاتی ضروریات سامنے آئیں گی جن کو سامنے رکھنا انتظامیہ, جو اسکول انتظامیہ ہے, تعلیمی اداروں کی انتظامیہ, ان کو مد نظر رکھنا چاہیے, وہ کیا ہوں گی؟
دیکھیں اصل میں ہم کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اگر مجھے کوئی چیز دکھ دے رہی ہے تو میں کہہ سکتی نا کہ بھئی میں اداس ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی آپ کو کسی کی بات بری لگے, آر یو این اڈلٹ, آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں تو آپ اس کو پروسیس کر کے اس کو سمجھ کے کہ بھئی مجھے فلانی بات بری لگی ہے, آپ جا کے اس شخص کے ساتھ بات بھی کر سکتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے, اچھا ہم تو بہت ایمفسائز کرتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوتے ہوئے کہ بچوں کی ڈیولپمنٹل ایج ہوتی ہے, تو 3-4 سال تک بچوں کا سوچنے کا سمجھنے کا انداز فرق ہوتا ہے, پھر 8-10 سال تک فرق ہوتا ہے, پھر پری ایڈولسنس کا یعنی کہ 12-13 سال تک فرق ہوتا ہے, اور پھر دوسرے. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں شاید وہ آپ کو بات بتا نہ سکیں, بیڈ ویٹنگ شروع کر دیں, رات کو ڈرونے خواب آ جائیں گے, بستر گیلا کر دیں گے, اس طرح کی باتیں کریں گے. تھوڑے سے اور بچے بڑے ہوں گے تو کچھ بچے ماؤں کے ساتھ بہت چپٹ جاتے ہیں, باہر نہیں جانا چاہتے, ملنا نہیں چاہتے, تو بچوں کے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ ان کی عمر کے مطابق آتے ہیں. اور ایک جو مین بچوں میں جو انزائٹی کا آتا ہے وہ کئی دفعہ اسکول ریفیوزل ہوتا ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا, ٹھیک ہے جی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اچھا ساتھ اس میں ایک بھی یہ بھی بتا دوں کہ اگریشن بھی بچوں میں آ جاتا ہے, اسپیشلی جیسے اگر بوائز ہوتے ہیں نا تو 12-13 سال پہ, ویسے जरा, क्योंकि उनके हार्मोन डेवलप हो रहे होते हैं तो वो फिर अग्रेसिव लेवल्स भी उनकी बढ़ जाती हैं। और घरों में चूंकि हम बाय एंड लार्ज कहते हैं अच्छा ठीक है मर्द थोड़ा सा जरा हो जाए ऊंचा बोल ले या कर ले, तो हम उसको भी हम कई दफा अलाउ कर देते हैं। अच्छा, अब स्कूल में क्या होता है? स्कूल में एक खास किस्म का माहौल चल रहा होता है कि टाइम पे पढ़ना है, टाइम पे बैठना है, टाइम पे ग्रुप एक्टिविटीज करनी है, बेसिकली कॉपरेशन का माहौल होता है। ठीक है, अब कोई भी बच्चा कोई तनहा पसंद हो जाए, कोई बच्चा गुस्सा कर ले, कोई अपनी पारी का इंतजार करे, कोई ग्राउंड में धक्के देना शुरू कर दे, कोई सिचुएशन हो जाए, तो स्कूल इंतजामिया नहीं डील कर पाती और वो कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स को। अब यहाँ पे अगर स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट होते हैं आपके बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में, तो हर छोटी बात को पहले से एंटिसिपेट करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं और वो रेडी होते हैं उसके लिए। यहाँ पे भी हमारे स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट इतने नहीं है या बहुत कम स्कूल्स में है, तो वो नहीं एक प्रॉपर पॉलिसी बना सकते हैं या प्रॉपर एक वो कर सकते कि जब बच्चे आएंगे तो हम किस चीज के लिए रेडी होंगे। लेकिन एक कोई तहकीक करनी होती है अपने माहौल के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपने रहन सहन के मुताबिक, तो वो यहाँ पे हमारे पास एक जो कुछ स्टिग्मास मेंटल हेल्थ के साथ अटैच है कि जी साइकोलॉजिस्ट होगा तो हम क्या पागल हैं या हमारा नफ्सियाती इलाज कराना। हम तो अभी इस चीज को इस चीज पे बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ये स्टिग्मा हट जाए कि किसी से बात कर लो तो वो ठीक है। तो स्कूल्स को पहले ही कुछ प्लान बनाना, प्लानिंग करना, कोई ऐसे प्रोग्राम्स रखना जिसमें पूरे स्कूल को, जैसे आप ग्रुप बाय ग्रुप क्लास बाय क्लास ले लें, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो कुछ सर प्लान कर लें बच्चों के लिए, तो एक ग्रुप में वो हंसते खेलते बच्चे अपने मसलों के साथ डील कर सकेंगे।
तो आप ये कह रही हैं कि वहां पर एक तो ये जरूरी है कि कोई साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट स्कूल में होना चाहिए जो ये पॉलिसी बनाए स्कूल के लिए कि सभी बच्चों को, खाव ग्रुप्स की सूरत में ही सही, लेकिन ऐसा माहौल पैदा करें कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और अपना कैथारसिस करें, अपनी एग्रेशन का इजहार करें पॉजिटिव तरीकों से। ये कह रही हैं?
एग्जैक्टली ऐसे ही करें। देखिए हम वन ऑन वन बच्चों से करें तो बहुत टाइम लगता है और इतने रिसोर्सेस नहीं होते, तो जो एक स्कूल होता है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बच्चों को लेता है और जो साइकोलॉजिस्ट होता है तो वो वहां पे उनको नोट करता है और बच्चों को ये भी पता होता है कि अच्छा आप में से कोई मुझसे आके कोई बात शेयर करना चाहे आप कर लो। सेकेंड चीज वो क्या करते हैं कि ग्रुप में जो बच्चों का कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम फिर उस बच्चे को नोट कर लेते हैं कि अच्छा इसने ये दिया, क्योंकि देखिए इंडिकेशन तो आ जाती है ना, क्योंकि बच्चा जरा ज्यादा अटेंशन सीकिंग होता है या कोई एंजाइटी आ रही होती है या कोई ना कोई, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं ना समझने के उसका बिहेवियर क्यों जो है इस एक्टिविटी में या इस माहौल में फर्क है। ठीक है, तो वहां से हम उन बच्चों को फिर थोड़ा सा अलग उनका केस देखे, फिर पेरेंट्स से बात करके, फिर अलग मतलब स्कूल में उसको प्रोमिनेंट करने के बजाय उसकी प्राइवेसी रखते हुए, उसकी जो सीक्रेसी है रखते हुए, उसकी इंफ्रादियत रखते हुए उसको हम बड़े अच्छी तरह डील कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? हमें मुआशरे में ऐसे अफराद चाहिए जो खुश हों, जो अपने मसलों का हल, उनको उनके पास वो तरीके हों कि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह खुश आगे लेके जा सके। तो जब हम छोटी छोटी ये ग्रुप एक्सरसाइजेस या स्कूल में हम कहते हैं ठीक है, हम कहते हैं वैलिडेशन करते हैं कि इट्स ओके टू बी सैड, यानी कि उदास होना कुदरती है, गुस्से होना कुदरती है, सब फीलिंग्स कुदरती हैं, लेकिन इनके साथ आपने तोड़ फोड़ के बजाय या रोने के बजाय आपने इनके साथ कैसे डील करना, तो फिर हम उनको मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो घरों में कई दफा ये नहीं हो पाता और नहीं हो रहा क्योंकि लाइफ बहुत बदल गई है यास्मीन, सब नौकरी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब अपने सर्वाइवल की जंग में लगे हुए हैं ना। तो ये कम्युनिटीज का मेरा ख्याल है एक रिक्वायरमेंट बन गई है कि आपका आपकी सोसाइटी आपकी फैमिली को स्ट्रेंथन करे और स्ट्रॉन्ग बनाए और उसको सहारा दे।
किस्सा मुख्तसर ये कि आप ये कह रही हैं कि स्कूलों में खासतौर पर COVID-19 के दौरान बहुत ज़रूरत होगी कि बच्चों को कंसल्टेंट्स मिले, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी मिले, जो नफसियाती मसाइल वो अपने साथ लेकर स्कूलों के खुलने के बाद स्कूलों में जाएंगे, जो उनको हैंडल कर सकें। और इस तरह हैंडल करें कि स्कूल का माहौल भी ठीक रहे और उन बच्चों को भी एक ऐसा माहौल मिले जहां वो अपनी पढ़ाई को पॉजिटिव तरीके से और मुस्बत सरगर्मियों के साथ जारी रखें। ठीक,
एग्जैक्टली
तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर आयजा यजदानी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप स्कूलों में कंसल्टेंसी करती हैं, आप एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस्लामाबाद से आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी शो के साथ। और अब प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ तालिब इल्मों की उन फलाही कोशिशों की जो वो हेल्थ के शोबे में कर रहे हैं और ऐसे में कर रहे हैं जब वो अभी अपने तालीमी सफर के मराहिल में हैं और अभी उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और अमली जिंदगी शुरू नहीं की है। ये तालिब इल्म है सरहद यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस के फिजियोथेरेपी के शोबे के चंद तालिब इल्म जिन्होंने मिलकर एक फिजियो क्लब बनाया है ताकि लोगों को फिजियोथेरेपी के शोबे के बारे में मालूमात फराहम की जाएं और 2025 तक पाकिस्तान से माजूरी के खात्मे का मिशन शुरू किया जाए। ये क्लब कैसे बना और पाकिस्तान भर में इस वक्त इसके 3,000 कारकुन किस तरह माजूर अफराद को मुफ्त फिजियोथेरेपी की सर्विसेज फराहम करने के साथ साथ देही इलाकों के नादार लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, ये तमाम मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से सरहद यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस के थर्ड ईयर के तालिब इल्म हैं फिजियोथेरेपी के शोबे के और इस फिजियो क्लब के एक फाउंडर मोहम्मद अफाफ। तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्लब कैसे बना, कब बना, कहाँ कहाँ इसकी शाखें हैं और किस तरह ये इस वक्त फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहा है, खासतौर पर COVID-19 के दौरान इसकी क्या सरगर्मियां रही। तो उनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अफाफ साहब।
वालेकुम अस्सलाम मैम।
तो बताइए क्या कहानी है आपकी, आपके फिजियो क्लब की?
मैम हम लोगों ने, मैं खुद एक फिजिकल थेरेपी का स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ फिजियोथेरेपी हूँ मैं पाकिस्तान में, और मेरे साथ हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं, ठीक है। तो मेरी नीयत ये थी, हम लोगों ने कहा कि जिस तरह इस फील्ड में, जो हमारी फील्ड है, इसमें रहकर हम लोग किस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्ट नहीं होती, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फिजिकल थेरेपी, और उनको पता नहीं होता, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो हमने कहा उनके लिए हम काम करेंगे। तो हम चार हम लोग जो थे, कुछ मेरे सीनियर्स थे, कुछ मेरे क्लास फेलोज थे, हम लोगों ने मिलकर बात की। हमने कहा चलें ठीक है, हम लोगों ने आपस में बात की, हम लोगों ने कहा चलो किसी सीनियर से जाके बात करते हैं जो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, इसमें हम आपका साथ देंगे। फिर हम सात बंदे मिले, हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने इस पर काम स्टार्ट किया। फिर साथ से हमारे साथ देख के काम, हमारे पास और भी जो तलबा हैं वो आते गए हमारे साथ, जुड़ते गए हमारे साथ, और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में टीम है और अबाउट 3,000 के हमारे पास जो मेंबर्स हैं इसके, और इसके अलावा वॉलंटियर्स अलहदा हैं। और हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को मुफ्त इलाज दें, और उन लोगों में बेसिकली हम लोग विजन 2025 के ऊपर काम कर रहे हैं, जो डिसेबिलिटी है पाकिस्तान से हम वो खत्म करना चाहते हैं, डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहते हैं कि माजूर वो इंसान नहीं होता, माजूर हमारी सोच होती है, हम उसको माजूर बना देते हैं, हम उसे कहते हैं तुम बोझ हो, ठीक है, लेकिन वो बोझ नहीं होता। और मोस्टली आप ये देखिए बैकवर्ड एरियाज में जाके ये होता है। अब जो जहाँ पे आप मेन सिटीज हैं, जो मेन शहर है यहाँ पर, वहां पर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता है, लेकिन जो यहाँ पर बैकवर्ड एरियाज में जाए वो लोग तो उसको मजदूर कह कह के बेचारे को इतना जहनी मरीज बना देते हैं, इतना नफसियाती मरीज बना देते हैं कि वो तंग आ जाता है, कहता है कि यार मैं मर जाऊं, इन्हें जिंदा रहना ही नहीं है। और इवन के हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि हमारे पास पेशेंट एक ऐसे आते हैं कि हमें मरने का तरीका बताया, हमें जिंदा ही नहीं रहना, वो आके रोते हैं, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। फिर
तो फिजिकल जो अमराज हैं जिनकी थेरेपीज हो सकती हैं वो कौन कौन से होते हैं जिसकी आप लोग मदद करते हैं?
स्ट्रोक आ जाता है इसके अंदर, पेशेंट्स इसमें जो बच्चे होते हैं, छोटे माजूर बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं इसके अंदर, वो आ जाते हैं। इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती है हमारे अंदर, पास ऐसे लोग होते हैं जिनका मतलब डिफरेंट आ जाती है मैम, उसमें कोई लॉन्ग टर्म होती है, कोई शॉर्ट टर्म होती है, बैक पेन वगैरह आ जाता है लॉन्ग टर्म में, मतलब स्ट्रोक आ जाता है, एपिलेप्सी के बाद पेशेंट आते हैं, उनको भी हम फिजिकल थेरेपी के जरिए, उनको एक्सरसाइजेस के जरिए हम लोग उनको ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि एपिलेप्सी तो वैसे तो आपका नर्वस सिस्टम का होता है, लेकिन ये है कि हम लोग उसको एक्सरसाइजेस बता सकते हैं जो उसके इसमें हेल्प कर सकती हैं, किस तरह उसको इम्प्रूव किया जा सके।
तो फिर बताइए कि कैसे आपका सिलसिला चल रहा है और कैसे आप कैंप्स लगाते हैं, कहाँ कहाँ आप लगा चुके हैं और उसकी सक्सेस स्टोरीज क्या है इस वक्त?
मैम, इसी साल हम लोगों ने इसी महीने में अगस्त से स्टार्ट किया था। बेसिकली वर्किंग तो हमारी जून जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो हमारा फील्ड वर्क था वो अभी अगस्त में हमारा फर्स्ट मेडिकल कैंप लगा था। और पहला हमारा मेडिकल कैंप लगा था वहां में आउट सेशन हम लोगों ने लगाया था जाके, और उसमें हमारे पास हम स्टूडेंट्स भी थे और डॉक्टर्स की टीम भी थी हमारे पास। इसमें साइकोलॉजिस्ट भी थे, अपनी फील्ड फिजियोथेरेपिस्ट भी थे और जनरल फिजिशियन भी थे। और उसमें जब हम लोगों ने कैंप लगाया तो हम लोग 30 के अबाउट स्टूडेंट्स थे उसमें, और उसमें हम लोगों ने मुफ्त उसमें मेडिसिन प्रोवाइड की थी लोगों को, दवाइयां दी थी, और इसके अलावा हम लोगों ने उनको इलाज दिया था। उसमें फिर यह हुआ था कि जो डिजर्विंग थे, जो हमारे वहाँ के लोकल फिजियोथेरेपिस्ट थे, जो उन्होंने हमें लोकल ज्वाइन किया था, हमने उनको रेफर कर दिया, उन्होंने उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। ठीक है, जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो उनको थेरेपी दे सकते हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं, उन्होंने उनको कहा ठीक है हम विलिंग है हम इसको करेंगे। तो इस तरह करके अब हमारा ये चल रहा है। और हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने लास्ट कैंप जो लगाया वो कहाट में लगाया था, मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप। और उसके बाद हम लोगों ने कोविड-19 के बाद अब इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, अबाउट हम लोगों ने 18 मेडिकल कैंप्स करवाए हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स, और इसमें से अपने उन पे करवाए हैं, कुछ हमने कोलैबोरेशन में भी करवाए हैं।
तो कितने अरसे में ये 18 कैंप लगाए आपने?
मैम, ये एक साल के अरसे में लगाए हैं हम लोगों ने, एक साल के अरसे में 18 मेडिकल कैंप्स लगाए हैं।
और पूरे पाकिस्तान
में? इसमें हमारे साथ पाकिस्तान में नहीं, फिलहाल हम लोग अभी कश्मीर साइड पर गए हैं, कश्मीर साइड होगी, केपीके वाली साइड होगी, पंजाब के अंदर हम लोग रहे हैं, और इंशाल्लाह अब यहाँ से निकल के सिंध साइड पे जाना है। हम लोगों ने जो प्लान था हमारा इस साल का, जो कोविड की वजह से रह गया, अब इंशाल्लाह अब इसको पूरा करेंगे, इंशाल्लाह सिंध और बलूचिस्तान की साइड पे जाएंगे अब हम लोग।
लेकिन जो आपने कहा कि आपके जो अरकान है वो तो पूरे पाकिस्तान में है, तो क्या वो लोकली वहाँ पर कैंप नहीं लगा रहे आपके अरकान जो टीम के हैं?
कैंप लगा रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि फ्री ट्रीटमेंट जो है और जो पेशेंट्स होते हैं डिजर्विंग, उनकी जो क्या नाम है जिम्मेदारी ली हुई है, वो कुछ फिजिकल थेरेपिस्ट वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। वहां से हमें डॉक्टर अजीब खटक लीड कर रहे हैं, कराची की टीम को, सिंध की टीम को डॉक्टर फजाज लीड कर रहे हैं। इस तरह करके सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हमें लीड कर रहे हैं, और अपने उन पे जितना हो रहा है वो हम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप नहीं हुआ, कोविड की वजह से हम रुक गए थे, इंशाल्लाह इस साल वहाँ जाके लगाना है हम लोगों ने।
तो आपने कहा कि आप लोग किसी से मदद नहीं लेते, बल्कि अपने डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो ही फंड्स अपने इकट्ठे करते हैं और कैंप भी लगाते हैं और अद्वियात भी फ्री फराम करते हैं।
जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम स्टूडेंट्स से, और इसमें यह था कि हम लोगों ने कहा था कि हमने किसी से नहीं लेना, जितना हमारे उन पे होता है हम करेंगे। ठीक है, उसमें जितनी हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, जितना हम अपने उन पे कर सकते हैं उतना हम करते हैं। और बाकी जब डॉक्टर्स हैं वो भी विलिंग होते हैं, वो भी कहते हैं कि ठीक है मेडिसिन हमारी तरफ से कर लें, और वो सबसे बड़ा तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं हमें आके। देखें, आप देख लें, डॉक्टर्स इतनी बिजी रूटीन होती है, इतनी हेक्टिक रूटीन होती है कि वो अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन वो कहते हैं हम आप लोगों को वीकेंड्स पे, हम लोग कैंप्स पे आप लोगों को जरूर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। और जो अब हम लोग कैंप्स के अलावा हम लोग फ्री वर्कशॉप भी करवाते हैं, तो वो कहते हैं जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको करेंगे। क्योंकि बास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, जो पेड वर्कशॉप अवेल नहीं कर सकते, जो मुश्किल से सिर्फ यूनिवर्सिटी की फी दे रहे होते हैं, वो उनको शौक होता है पढ़ने का, करने का, सीखने का। तो इसीलिए हम लोग इस तरह लेके, एक तो एजुकेशन की साइड पे अगर आप देखा जाए अपनी फील्ड के लिए, हम वो भी कर रहे हैं, मतलब कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज करवा लिए फ्री, और वेबिनार्स ऑनलाइन करवा लिए हम लोगों ने, फ्री वर्कशॉप्स करवाई हैं, इस तरह करके हम लोग लेके चल रहे हैं।
यानी आप अपने सब्जेक्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं और इसकी नॉलेज को भी प्रमोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स में भी और आम लोगों में भी। तो और जो कोविड-19 के दौरान फिर आपने एक टेली मेडिसिन की सर्विस भी शुरू की, कहाँ कहाँ के लोगों को आपने ट्रीट किया या सर्विसेज फराहम की, और क्या क्या सर्विसेज फराहम की आपने, खासतौर पर फिजिकल थेरेपी के हवाले से बात कीजिए।
सबसे पहले जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने इसकी एक अवेयरनेस कैंपेन की, ठीक है, उसमें हम लोगों ने काम किया, हमने पहले बताया अवेयरनेस होता क्या है, कैसे है, क्योंकि लोग पैनिक हो रहे थे, लोगों को इतना उसका पता नहीं था, वो साथ ही वो कोविड-19 को यही समझ रहे थे कि इसमें फौरन बंदे की जो है डेथ, जो मौत है वो आके हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने डेफिनेटली कंडीशन को देखते हुए हम लेके चले, हमने बताया कि नहीं इस तरह नहीं होता, ये एहतियात करनी है, फ्लाह करना है। फिर इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया, अपना पार्ट प्ले किया, उनके हम लोगों ने टेलीमेडिसिन चलाई, एक सेटअप बनाया। टेलीमेडिसिन में ये था कि हम लोगों ने जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे, क्योंकि डेफिनेटली सब कुछ क्लोज हो गया था, लॉकडाउन था कम्प्लीटली, कहीं भी आप लोगों को डॉक्टर्स वगैरह जो थे इमरजेंसी होती तो नहीं इस तरह हो रहे थे, हम लोगों ने कहा टेली मेडिसिन, इसमें जो डॉक्टर्स हैं हमारे पास, फिजिकल थेरेपिस्ट हो गए हमारे पास, साइकेट्रिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, और हमारे पास आ जाते हैं फिर جنرل فزیشین آ جاتے ہیں، نیورو سرجن وغیرہ، اس طرح جتنی بھی ان کی خدمات ہم انہوں نے کہا ہم آپ کو دے سکتے ہیں ہم آپ کو دیں گے. تو اس کے ذریعے ہمارے ساتھ کچھ لوکل پیشنٹس ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں رہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پشاور سے، کے پی کے سے، پنجاب سائڈ سے اور ایون کراچی سائڈ سے بھی ہمیں کالز آئیں کہ اس طرح یہ ایشو چل رہا ہے ہمیں بتائیں ان کو دیں. تو ان لوگوں نے فری آف کاسٹ وداؤٹ اینی کاسٹ ان کو فری کنسلٹیشن پرووائڈ کی. ہمارے سائیکولوجسٹ نے فری سیشنز لیے کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک انزائٹی، ایک ڈپریشن، ایک لہر سی اس کی ایک دم نکل آئی تھی. لوگ گھر میں رہ کے تنگ آ گئے تھے، لوگ بیماری کا سوچ سوچ کے تنگ آ گئے تھے. ہم نے ان کو نکالنے کے لیے ان کو فری سیشنز بھی دیے. اور فیزیو تھراپسٹ کا یہ رول تھا میم کہ اس میں جو آن لائن جتنا ہم دے سکتے تھے، کیونکہ فیزیو تھراپی آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری مینول بھی آ جاتی ہے، اس میں باقی بھی آتی ہے، تو موسٹلی اس میں آپ پیشنٹ سے ڈائریکٹ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے آپ کا. لیکن جو ہمارے دوسرے فزیکل تھراپسٹ ہیں وہ آن ڈیوٹی رہے ہیں ڈیورنگ کرونا، یہ کووڈ، اور ان لوگوں نے کیا نام ہے اپنی جو سروسز ہیں وہاں دی ہیں. اور ایسے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں، دیکھنے ہم لوگ گئے ہیں. ہم لوگوں نے کووڈ کے اندر راشن ڈرائیو بھی اسٹارٹ کی تھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے، ہم لوگوں نے ڈاکٹرس مل کے، اسٹوڈنٹس نے مل کے ڈونیٹ کیا، اور ہم لوگوں نے مل کے جو سفید پوش فیملیز تھی ان کے گھر گھر جا کے ہم لوگوں نے وہ پرووائڈ کیا جن کو نہیں ملتا، جو رہ جاتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو اپنے ہی سرکل میں جتنے ہمارے قریبی تھے ہم لوگوں نے ان سب سے کیا. ڈیفینیٹلی ایک طریقے سے دینا ہوتا ہے کسی کو. ہم لوگوں نے ایسے کیا کہ کچھ لوگ نہیں مانگتے، کچھ شرم آتی ہے مانگتے ہوئے کچھ کو، تو ہم لوگوں نے بہانے سے نہ ان کو کہ بھائی ہمارے پاس یہ جاب ہے، ٹیلی میڈیسن چلا رہے ہیں ہم لوگ، آئے ہمارے پاس، آئے ہم آپ کو پے کریں گے. تو ہم نے اس طریقے سے کر کے ہم نے کہا آئے ہمارے ساتھ آئے، ہم نے راشن بانٹنے جانا ہے، اس کو ہم آپ کو اتنے پے کریں گے پر اور. تو ہم لوگوں نے اس طرح کر کے، ہمیں پتا تھا کسی فیملی سے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو ہم لوگوں نے ان کو پرووائڈ کیا جتنا ہم کر سکتے ہیں. باقی فزیکل تھراپسٹ نے یہ کیا کہ کووڈ کے ان کی جو سروسز تھیں اس میں پرووائڈ کی، ان کی چیسٹ تھراپی آ جاتی ہے، اس طرح کر کے ڈیفرنٹ انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے.
تو یہ سارا جو آن لائن تھی، یہ واٹس ایپ تھا، کس طرح یہ لوگ آپ سے رابطے میں ہو رہے تھے؟
واٹس ایپ پہ ہم لوگوں نے شیئر کیا، گروپس میں شیئر کیا، اسٹوریز لگائی، انسٹا پہ اور فیس بک پہ ہم لوگوں نے یہ کیا. وہی ہوتا ہے کہ فون نمبر دیے ہوئے تھے، آپ ہم سے رابطہ کر لیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ رابطہ کر لیتے ہیں، بعض کسی کے لنک کے تھرو ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس جو واٹس ایپ گروپ تھا، اس کا نام کیا تھا، کیا ہے؟
ہم لوگوں نے ٹیلی میڈیسن کے نام سے ہی بنایا ہوا تھا، اور ہمارا مطلب فیزیو کلب کے نام سے، جیسے ڈاکٹرز کا ہے تو ڈاکٹرز فیزیو کلب کے نام سے ہم نے بنایا ہوا ہے. کسی انسٹیٹیوٹ کے جیسے الگ سے ہے تو انسٹیٹیوٹ کے نام سے، فیزیو کلب کے نام سے بنایا ہوا ہے. اس طرح کر کے مین فیزیو کلب ہی ہے، اس کے آگے جو ٹیم ہے اس کی ٹیم کا نام ہے، یہ اس کی ٹیم ہے، یہ اس کی ٹیم ہے. جیسے سائیکولوجسٹ ہیں، ان کا لکھا ہے سائیکولوجسٹ فیزیو کلب، پی سی شارٹ فارم. اس طرح ہم لوگوں نے سب کے الگ الگ گروپس بنائے ہوئے.
اچھا، لیکن نام فیزیو کلب ہی ہے.
حالانکہ
اس میں فیزیو تھراپی کے علاوہ سبھی کچھ شامل ہوتا چلا گیا، اور مختلف انسٹیٹیوٹس کے مختلف کلبز بن گئے جو اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن سب آپس میں انٹر لنکڈ ہیں.
اس میں ایسا ہی ہے، جب ہماری ٹیمز بنی ہیں اب ہر کوئی اپنے ان پر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اس میں کوئی تو ہمارے ساتھ ابھی جیسے راشن ڈرائیو ہم لوگوں نے کچھ نے مل کے کی، اس کے علاوہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ان پر کہا کہ سر ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ کریں. تو ہم لوگوں نے بیسیکلی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ہمارا جو ایک ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی، ہمیں کوالٹی میٹر کرتی ہے، اور ہم لوگوں نے جتنا ہمارے سے اچھا ہو سکتا ہے ہم نے وہ پرووائڈ کرنا ہے. تو ہم لوگوں نے دکھانا مقصد نہیں ہمارا، لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے جب تک آپ دکھاؤ نہ، ان کو یقین نہیں آتا کہ یار ہاں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اپریشیٹ نہیں کرتے. تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کا دور بھی چل رہا ہے، پھر اسی لیے ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے کہ ہاں یہ دیکھیں ہم لوگ کر رہے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ، تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں، وہ بھی امپریس ہوں، آئیں ہمارے ساتھ ملیں، تاکہ وہ بھی اپنا جتنا بھی ان سے رول پارٹ پلے کر سکتے ہیں اپنا رول پلے کریں آگے.
بالکل، اچھائی کو بھی فروغ دینا اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ برائی تو خود ہی پھیل جاتی ہے، اچھائی کو پھیلانے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے. اچھا، تو اب جب کہ پاکستان میں یہ لاک ڈاؤن تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو اب آپ کا جو میڈیکل کیمپ ہے، اب ان کا کیا پروگرام ہے، کہاں کہاں لگائیں گے اور کیسے لگائیں گے اب، اور کیا یہ ٹیلی جو میڈیسن کا سلسلہ ہے یہ بھی جاری رکھیں گے؟
جی میم بالکل، اب اس میں ایسا ہی ہے، ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں جو نہیں آ سکتے، جو نہیں کر سکتے، وہ آن لائن ہمارے سے رابطے میں رہیں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ کووڈ ختم ہوا، اب ہم دوبارہ سے اپنا کام شروع کریں گے. اب ہم لوگوں نے کیا نام ہے، نیکسٹ ہمارا جو میڈیکل کیمپ ہے وہ ہے 22nd of August کو اور 23rd of August کو. تو 2 days کا یہ کیمپ ہے ہمارا وہاں پر وزیر آباد پنجاب میں، یہاں سے ہماری ٹیم جائے گی، اور باقی ہمیں گجراںوالہ سے، لاہور سے اور سیالکوٹ سے ٹیم جوائن کریں گی، لوکل جتنی بھی ہیں وہاں سے، بکھر وغیرہ سے، جو جہاں سے آ سکتا ہے. और इसके अलावा हम लोग पंजाब साइड से निकल के केपी के साइड पे हमारे हमने प्लान बनाया हुआ होता है कि इस साल के हमने इतने कैंप्स करने हैं, 18 कैंप्स प्लान थे इस साल के। उसमें हमारे पास पंजाब आ जाता है, कश्मीर साइड आ जाती है और कराची साइड, कराची हो गया, सिंध हो गया, और ये हम लोगों ने एरिया कवर करने थे इस साल। और हमारा गोल ये है कि हम लोग एक ऐसा अपना एक वो ग्रुप, इसमें हमारा मकसद ये है कि हम लोग चाहते हैं कि अभी हम तो प्लान कर रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर, 10 हो 15 दिन हो, यहाँ से एक टीम निकले और जितनी भी मेन मेन सिटीज है ना वो कवर करती जाए उसके कराची तक, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि किस सिटी में किस तरह का पेशेंट है, किस तरह की फैसिलिटी नहीं। तो उसके अलावा डेफिनेटली एक सिटी में आप कैंप करते हैं जो लेफ्ट राइट जितने भी आपके गाँव होते हैं वहां से पेशेंट आते हैं, और जब जाहिर सी बात है गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो नहीं उसकी स्टाथ होती वो आता है हमारे पास, तो हमें एक रिकॉर्ड आ जाता है कि यार ये ऐसा बंदा है, ये इसको ये जरूरत है, तो उसमें जो भी डिजर्विंग होता है उनकी हम हेल्प कर देते हैं। और मकसद ये है हमारा इसका कि जब 10 से 15 दिन का टेनोवर है इसके अंदर हम डेटा इकट्ठा करें और लोगों का हमें पता चल जाएगा किस तरह की चीज और किस तरह के हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि किस तरह हम लोग उसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ी इलाकों में हम जाते हैं तो उनके उनकी जो फिजिकल थेरेपी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें उनकी मसले मसाइल अलग होते हैं, क्योंकि उनके अक्सर घुटनों का मसला आ जाता है कि घुटना ट्विस्ट हो जाता है उनका चलते चलते, ऊंचा पथरीला इलाके होते हैं ऐसे। अगर आप दूसरी साइड पे आते हैं, सिंध वाली साइड पे आते हैं, तो ये प्लेन इलाके हैं सारे, इनके अपने मसले मसाइल होते हैं, तो उस तरह देख के एक हमारे पास रिकॉर्ड भी आ जाता है ताकि हम लोग उसको किस तरह आगे कवर कर सकते हैं।
तो इस वक्त जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में, अगर आप चाहें कि वो आपसे राब्ता करें, जिनको आपकी जरूरत है, तो बताइए कैसे वो आप तक पहुंचे।
फेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है फिजियो क्लब के नाम से, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज बना हुआ है फिजियो क्लब के नाम से, और इसके अलावा हमारा यूट्यूब है, आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर है, ऑफिशियल नंबर है हमारा, आप उस पे रब्ता करें। जो नंबर है हमारा, जो ऑफिशियल नंबर है जो हम लेके चल रहे हैं, वो है 0330-5464-517। मैं अगेन रिपीट कर दूं, 0330-5464-517।
तो बहुत से लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान भर में खासतौर पर, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो किसी न किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं जिसका इलाज वो नहीं करा पाते, वो अगर आपसे रब्ता करें तो न सिर्फ ये कि वो फिजियोथेरेपी के जो पेशेंट्स, वही नहीं बल्कि कोई और भी मर्ज़ के अगर पेशेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि आपकी मदद हासिल कर सकें, तो वो आपसे इन तमाम लिंक्स से रब्ता कर सकते हैं, और आप यकीनन कोशिश करेंगे कि जैसी भी हो, जिस तरह भी हो सके, आप उनकी मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफ़ाक, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फिजियोथेरेपी पढ़ रहे हैं, और आपने और आपके साथियों ने, स्टूडेंट्स ने और फिर आपके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक क्लब बनाया है फिजियो क्लब के नाम से, जो इस वक्त पाकिस्तान भर में न सिर्फ ये कि मेडिकल कैंप्स लगा रहा है बल्कि टेली मेडिसिन की सर्विसेज भी फ्री फराहम कर रहा है। जो फोकस आपका है वो है फिजियोथेरेपी। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में काम की जगहों पर खवातीन को तहफ़ फराहम करने के लिए सूबाई और वफाकी सतह पर कायम इदारों के बारे में, जो एक मखसूस कानून के तहत वजूद में आए हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है पंजाब में कायम इस इदारे की सरबराह मोहतरमा रुखसाना गिलानी को, जो इस कानून और इस दायरे की जानिब से काम की जगहों पर खवातीन के तहफ्फुज के लिए की जाने वाली कोशिशों पर रोशनी डालेंगी। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना गिलानी साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम।
रुखसाना गिलानी साहिबा, हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप किस तरह इस मनसब पर फाइज हुई, क्या आपका पस मंजर था जिसके तहत आपको इस इदारे का सरबराह चुना गया।
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और एक अहम मौसम पे गुफ्तगू करने के लिए, और बिलाशुबा ये जो है ये माइलस्टोन की जगह है। ये जो इदारा कायम हुआ है जो खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए है, उनकी हरासानगी से बचाव के लिए एक सेटअप मुहैया करता है। ये 2010 में एक कानून पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है ये, और ये सेंटर में 2010 में हुआ। फिर 2013 में डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत सारे सूबों ने इसमें अपने अपने इदारे कायम किए, और इस वक्त चारों सूबों में ये कुछ में खवातीन है, एक में जेंट्स भी हैं, और ये कायम है इदारा। और इसमें जो सेंटर में है वो भी मौजूद है, वो फेडरल वर्कमैन पे कहलाता है। तो ये इसके बाद ये यहाँ पे तकरीबन 6-7 साल से ये इदारा बड़ा सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमारे मेरी जो बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त, इसके जो अगराज मकासद है उसको पूरा करने के लिए, मैंने बेसिकली मैं सिविल सर्विस पाकिस्तान से ताल्लुक है मेरा, और अकाउंट सर्विस है, और 13 CDP की हूँ मैं, और मैंने मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट पोस्ट से ऊपर काम किया है थ्रू आउट माई कैरियर, जिसमें आर्मी का ऑडिट भी शामिल है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, और फिर सिविलियन सेटअप में जी ऑफिसेस में भी काम किया मैंने, फिर वापडा में भी काम किया मैंने, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, चुनाचे मेरा एक मुख्तलिफ फील्ड में तजर्बा है काम करने का, इसी को मलहूज़े खातर रख के मुझे यहाँ पे खास तौर पर इस सीट के लिए चुना गया। और इसमें ये रिक्वायरमेंट भी थी कि ग्रेड 21 से 20 से अबव होना चाहिए ऑफिसर, और ये कि उसमें या पार्लियामेंट का मेंबर हो, और इसमें वो क्वालिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी मौजूद हो।
तो अब ये बताइए कि ये इदारा कायम हो गया और आप कह रही हैं कि 5-6 साल से कायम है, तो इस दौरान क्या आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं? बल्कि सक्सेस स्टोरीज से पहले ये बताइए कि क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में खवातीन को हरासा किए जाने के हवाले से, खासतौर पर पंजाब में।
अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको रोशनी डालूंगी कि हमारे पास जो इस वक्त कमोबेश 5,000 लेडीज ने अप्रोच किया है यहाँ पे हमारे ऑफिस में, और ये खासी बड़ी तादाद है और आपको लगती भी है, लेकिन मसला ये है कि हमारे चूंकि कानून में एक खास कानून है ये जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, चुनाचे हम उस स्पेसिफिक पर्पस को लेके ही जो कंप्लेंट्स है उसको सिलेक्ट करते हैं, चुनाचे उसकी तादाद जो हमारे उसके हमारे कानून के दायरे में आती है उनकी तादाद तकरीबन 500 के करीब है उन केसों की तादाद। बाकी लोगों को हम कोई डोमेस्टिक वायलेंस के भी होते हैं, कुछ इनहेरिटेंस के मैटर्स होते हैं, और कुछ दूसरे मामला भी होते हैं, उसको फिर हम उन लोगों को रेफर कर देते हैं मुख्तलिफ इदारों में। ये मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जिसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, बाकी हमारे पास जो डेली है वो 8-10 खवातीन वैसे विजिट करती हैं, टेलीफोन पे पूछती हैं, वेबसाइट पे पूछती हैं कि किस तरह कहाँ मैं जाऊँ, किस तरह से मैं मुझे रिलीफ मिलेगा। वो तादाद जो है हजारों में है वो उसको शामिल नहीं है इनमें।
अच्छा।
ये तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन है इसकी हमारे पास मौजूद है। हाँ जी,
ज्यादातर किन डिपार्टमेंट से ये शिकायत आती है आपको और किस नौयत की होती है ज्यादातर?
अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जिन पास इदारों में खवातीन की बहुत ज्यादा तादाद है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, पॉपुलेशन वेलफेयर में, तो यहाँ पे जो है ना खवातीन की खासी ज्यादा तादाद होती है। और जो लेकिन इट डजंट मीन के बाकी जगहों से लोग नहीं आते, बाकी बड़ी सीरियस सीरियस जगहों से आते हैं। अभी जो खासतौर पर हमने नोट किया है कि कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो कि बिल्कुल हमें पता भी नहीं था, वहां से भी आ रहे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी आ रहे हैं लोग, कुछ कमर्शियल सेक्टर से भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं बहुत सारे। तो मतलब अब जो है चूंकि अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, तो उससे लोग जो है ना वो मुख्तलिफ और जगहों से आते हैं, और बाल का जब उनको हम बताते हैं ना कि आके हमारे दायरे में नहीं आती तो खासा मायूस भी होते हैं बेचारे।
फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, किस तरह जो शिकायत है उनको उनकी तकमील की जा रही है, उनको जवाब दिया जा रहा है, उन पर उनकी उनकी दादरसी की जा रही है?
अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि मैंने जब से आई हूँ तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं, तो मैंने एक खास स्लोगन के तहत इसको एक उस आप समझे कि बिल्कुल क्रैश प्रोग्राम की तरह इसको चलाया है, जैसे इसका, और हमने बकायदा स्लोगन भी इसको दिया फ्री और फॉर इंसाफ। फ्री इस तरह के इसमें कोई टिकट विकट लगाने की जरूरत नहीं है, वुमन जस्ट एंटर्स द ऑफिस और लॉज्ड कंप्लेंट।
तो
उसमें वो कोई नहीं, उसको कुछ भी कोई कोई लॉयर आने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ और नहीं जरूरत उसको। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस है, स्टाफ है, उसको हम सपोर्ट कर देते हैं, जो बकायदा एप्लीकेशन उससे जो है वो दिखवाती भी हैं, उसको गाइडलाइन देती हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं किस तरह। बाजू का तो बिल्कुल वो साइकोलॉजिकल इतनी बेचारी खत्म हो चुकी होती है कि वो लिख भी नहीं पाती। वो बाद वो जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब खातून कोई सबमिट करती है, लॉन्च करती है कंप्लेंट, तो हम इमीडिएटली विद इन 3 डेज डिमांड करते हैं एक्यूज से कि वो जवाब दे, और उसको हम शो कॉज नोटिस कहते हैं। जो ही उसका जवाब विद इन 3 डेज और 5 डेज आ जाता है तो हमारी बकायदा हियरिंग शुरू हो जाती है। उसके फिर हम तकरीबन 3-4 डेट्स उसकी इस तरह से देते हैं, बाद उसका डेट ज्यादा भी हो जाती है, और उसके बाद उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज करता है। इस तरह यही उसके विटनेस भी अगर वो प्रोड्यूस करना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं होता, लेकिन ज्यादा हम विटनेसेस की इजाजत नहीं देते क्योंकि फिर केस बहुत लंबा हो जाता है और टाइम बहुत डिमांड होता है, 3-4 यूजली हो सकते हैं बस। चुनाचे जब एक्यूज भी जब अपनी बारी के ऊपर इसी तरह अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है अगली हियरिंग में, और उसमें वो भी उसकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो एक तरह से केस खत्म हो जाता है और हम फिर उसके बाद डिसीजन दे देते हैं एक डेट कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन दे के ना, ताकि हम उस अच्छे में उस केस की दोबारा स्टडी कर सके।
जब आपने फैसला दे दिया तो उस पर उसको क्या सजा क्या मिलती है, सजा की नौयत क्या होती है?
जी, सजाएं हमारे पास जो पीटा के तहत सजाएं है ना वो ही मौजूद है। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट उसको भेजते हैं लेटर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन ना करे तो फिर हम कंटेम्प्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बेसिकली अभी तक ये हुआ तो नहीं है और ना ही कोई अक्यूज ऐसा है जो कोई पेश नहीं हुआ। हम तकरीबन 350 केसों के फैसले सुना चुके हैं और 100 केस जो है वो पाइपलाइन में है। जो बिल्कुल मामूली सजा है ना वो तो है सेंसोर है, यानी वार्निंग है। उसके बाद इंक्रीमेंट कम करना, 3 साल करें 1 साल करें, फिर या बंद करना इंक्रीमेंट, या फिर आपकी प्रमोशन बंद कर दें, या स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर कोई टाइम बार है वो उसको डिस्टर्ब करें, और फाइन भी है इसमें, रिकवरी भी हो सकती है। तो हाई सजाए है उसमें रिमूवल ऑफ सर्विस है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, और डाउनग्रेड करना है।
और मैक्सिमम कितना जुर्माना आप आयद कर सकती हैं?
मैक्सिमम की कोई शर्त जितना मर्जी आप कर दें, लेकिन हम जुर्माने के तौर पर जरा केयरफुल रहते हैं कि क्योंकि जो लेडीज हमारे पास आती हैं वो जुर्माने को यूजुअली इतना कैटर फॉर नहीं करती। वो कहती हैं कि इसने जो हमारी जिंदगी अजाब की हुई है उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे हमने ये तकरीबन 36 ऑफिसर है जो के रिमूवर फ्रॉम सर्विस की सजा सुनाई है अब तक इन 350 में से।
अच्छा,
बल्कि इससे भी ज्यादा। हाँ जी, और जो माइनर के 250 केसेस हैं उस जो हमने माइनर सजाएं भी दी हैं, जिसमें यही इंक्रीमेंट रोकना और या प्रमोशन रोकना शामिल है। मतलब ये सजाएं जो है रिमूवल फ्रॉम सर्विस की या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की, ये समझी जाती है हाईस्ट है। जो आप जिस भी ग्रेड में है आप उसी वक्त रिटायर हो जाएंगे और आपको मिले नौकरी से उतर जाएंगे और मिलेगा भी कुछ नहीं। तो मतलब तब कोई उसमें कंपनसेशन नहीं है। फिलहाल ये आखिरी सजा है जो दी जाती है और ये हमने दी है। ये मतलब इसमें तकरीबन 36 केसेस ऐसे हैं।
अच्छा, पूरे पंजाब।
ये जो हमारी सजा है ना, ये मैं बताना चाहूंगी यास्मीन की, ये जाती है गवर्नर के पास विद इन 30 डेज अपील हो सकती है। लेकिन मैं आपको जो कन्फर्मिटी के साथ बता रही थी ना कि क्यों ये हमारा बड़ा इम्प्रेसिव ये फिगर है, क्योंकि गवर्नर 99% कंप्लेंट्स जो हम डिसीजन देते हैं ना उसी को अपहोल्ड कर रहे हैं।
मतलब ये कि ये इतनी इतना खतर इतना सख्त कानून है कि अब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि काम की जगहों पर उनको इल्म भी हो कि ये कानून मौजूद है, ताकि वो मोहतात रहें। तो उसकी अवेयरनेस के लिए पहले से आप कुछ इन्फॉर्म करते हैं इदारों को, वहाँ के लोगों को, कि ये कानून मौजूद है तो एहतियात से काम लें, खवातीन से डील करते।
अच्छा, इसमें ये है कि पहले तो इसमें इस कानून में ये शर्त है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन अपने 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 अंदर हैरेसमेंट कमेटी बनाएंगी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी डिजाइन करेंगी, और वो जो कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रॉपर जगह के ऊपर लगाया जाएगा ये काम करने का तरीकेकार किया है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करे, नहीं लगाता या कुछ और, या ये नॉमिनेट नहीं करता कमेटी, तो उसको 1 लाख जुर्माना भी है
कानून में लिखा है ये, तो ये चुनाचे ये अगर कोई कंप्लेंट करे तो हम उसको फिर जाके ये दे सकते हैं, हमने दिया भी है 7-8 किस्मों में। तो यूजन ये है ना कि इसमें जरा कंप्लेंट इस साइड पे कम आती है हमें। वैसे जो रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, हम तमाम एवरी आफ्टर सेकंड मंथ हम एक लेटर निकालते हैं तकरीबन 200 डिपार्टमेंट्स, मोर देन 200 डिपार्टमेंट्स को, ये जो है ना ये कानून है और ये इम्प्लीमेंट करें। मोर ओवर हमने एक हैरेसमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया है फॉर द लास्ट 3 इयर्स।
ये वो सूरत हाल है इस वक्त जो इदारों में जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ये कार्रवाइयाँ ही इस बुराई को ख़त्म करने का सबब बनेंगी, और आखिरकार यकीनी तौर पर जब लोगों को पता लग जाएगा कि सज़ा भी मिलेगी तो फिर वो मोहतात हो जाएंगे। और ख़वातीन भी जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, वो अपने इस राइट को पहचानें, और आप उनको बताइए कि वो क्या करें, जब भी कोई भी सूरत हाल हो तो वो किस तरह आपसे खड़ी हो जाए अपने हक के लिए, वो आप बात कीजिए इस वक्त।
और खवातीन को आगे आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, डे केयर सेंटर्स भी बने उनके लिए, उनकी दूसरी जरूरियात का भी ख्याल रखा जाए, ताकि वो, क्योंकि उनमें देखे उनमें भी इसी तरह से सलाहियतें हैं जैसे मर्दों में है, तो आगे इसमें जाने में जो है ना कोई चीज रुकावट नहीं होनी चाहिए। और ये कानून इस चीज की जो है एक तरह से श्योरिटी देता है, और मैं समझती हूँ ये एक बहुत जैसे लैंडमार्क है खवातीन के हक में। ये
जरूरत इस बात की है कि जो खवातीन इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, उनके लिए आपका यही पैगाम कि वो अपने हक को पहचाने, उनको कानून ने ये हक दिया है कि अगर उनको काम की जगहों पर, उनको अपनी माशी जिंदगी को बेहतर बनाने के दौरान अगर कोई रुकावट पेश आ रही है किसी मर्द की वजह से जो नफ्सियाती तौर पर, फिजिकल तौर पर इतना हरासा कर रहा है कि आपकी जिंदगी और आपकी जॉब खतरे में पड़ रही है, तो आप उठें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, पहले उस कमेटी के पास जाएं जो आपके इदारे में ऑलरेडी मौजूद है, और अगर वो कमेटी भी आपकी बात तवज्जो से नहीं सुन रही तो आप बराह रास्त पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं रुखसाना गिदानी साहिबा जो मुहतसिब हैं, और वो शिकायत वसूल भी करती हैं और 3 महीने के अंदर अंदर फैसला भी कर देती हैं अगर कोई ज्यादती कोई मर्द कर रहा है तो फौरी तौर पर अपनी किसी भी कंप्लेंट को जरूर दर्ज कराएं, अपने हक को पहचाने और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। बहुत शुक्रिया रुखसाना गिदानी साहिबा,
आपने बहुत शुक्रिया मेहरबानी जी, थैंक यू,
आपने हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िए देखने सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खुसूसी शो के साथ। और अब हम आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं सुमेरा रजा को, जो कि एक लॉयर हैं और बच्चों के और ख्वातीन के लिए मुख्तलिफ इदारों में लीगल मशावरत कर रही हैं, और आप जो हैं कराची में बच्चों और ख्वातीन के हकूक़ की लीगल काउंसलिंग कर चुकी हैं काफ़ी अरसे तक, बल्कि 15 साल तक, और इसके बाद ये पंजाब लीगल अवेयरनेस ऑफिसर रह चुकी हैं पाकिस्तान वीमेन लॉयर एसोसिएशन जो पावला है, और इस वक्त ये कंसल्टेंट हैं मुख्तलिफ इदारों में लीगल। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा रजा साहिबा। वालेकुम सलाम। तो बताइए कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो बच्चों के खिलाफ तशद्दुद या ज्यादतियाँ होती हैं उनके क्या क्या कवानीन इस वक्त मौजूद हैं और उन पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है?
पिछले 2 साल के अरसे में देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में, टेलीविजन के ऊपर, अखबारात में चाइल्ड अब्यूज के बहुत सारे केसेस पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा सामने आए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से चाइल्ड अब्यूज ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है, ये हमेशा से होता रहा, लेकिन रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो पिछले 1-2 साल के अंदर ज्यादा, जबकि एक बहुत ज्यादा मशहूर जो वाकया हुआ वो ज़ैनब मर्डर केस था, जो कि एक 7 साल की बच्ची को रेप करके और उसके बाद मार के कूड़े की जगह फेंक दिया गया था। उस केस के बाद काफी ज्यादा हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे भी और बहुत जगहों पे शोर मचा, और जो हमारे लॉस तो हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, हमारे पिनल कोड में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं कि अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है या फोर्स्ड लेबर है, ये सारी अब्यूज जो बच्चों के, इन सब के बारे में लॉज मौजूद हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर वीक है कि जब भी कोई चाइल्ड अब्यूज का वाकया या सेक्सुअल अब्यूज का वाकया होता है तो लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते। ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इस चीज को दबा दिया जाता है। इवन वालिदैन खुद भी इस बात को दबा देते हैं। अगर वो आगे बढ़ें, कानून की मदद हासिल करें, तो लॉज मौजूद हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन एक हद तक वीक जरूर है। वजह यह है कि हम लोग उसको पहुंच ही नहीं पाते। जो जो चाइल्ड अब्यूज का शिकार बच्चे होते हैं, पहले तो उनकी फैमिली इस चीज को दबा देती है। फर्ज करें फैमिली अगर बाहर निकलती है और कानून की मदद हासिल करना चाहती है, पुलिस तक जाती है, तो पुलिस बहुत कोऑपरेटिव नहीं होती। जो सिस्टम है ना कि पुलिस पे जाएं, आप रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसके बाद इन्वेस्टिगेट हो, वो इतना लंबा प्रोसेस है और उसमें उसके लोग एक मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से गुजरने के बाद एक लंबे सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इनका इतना क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए जितना क्विक, क्योंकि कानून में तो 7 साल की कैद भी है। और अब जैनब मर्डर केस का जो जो था कल्प्रिट, उसको डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। तो ये तो सोशल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा था।
ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि कौन कौन से लॉज हैं, मसलन अगर किसी बच्चे के साथ कोई लेबर बिला वजह ले रहा है, मुशक्कत करवा रहा है, जबरी मुशक्कत करवा रहा है, उसके लिए क्या लॉ है, क्या सजा मिल सकती है? अगर किसी ने सेक्चुअल ज्याति की है किसी बच्चे के साथ, उसके लिए क्या सजाएं हैं? और लेटेस्ट जो सजाएं या कवानीन आए हैं वो जरा मुख्तसरन हमारे सुनने वालों तक पहुँचाइए।
हमारे यहाँ अंडर एज बच्चों से काम कराना, फोर्स्ड लेबर, उनको कम तनख्वाह पे काम कराना, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसके अंदर पनिशमेंट रखता है। और अगर वो आपकी नजर में भी कोई बच्चा आए जो कि अंडर एज है और फोर्स्ड लेबर है, तो आप उसकी जरूर इतला करें, कंप्लेन करें। इसमें डिफरेंट पनिशमेंट 6 महीने से लेके 7 साल तक की इसमें सजा हो सकती है, हैवी पेनल्टी हो सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो उसका सेक्शन 292A, 292B, 292C, ये सब चाइल्ड अब्यूज, अंडर एज जो इनके साथ लेबर कराया जाता है या काम मुआवजे पे, इन सब को हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखता है। जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रही हूँ अवेयरनेस की, वो इसलिए कह रही हूँ कि माँ बाप यहाँ पे अपने बच्चों को बजाय पढ़ाने के खुद काम पे डालते हैं।
और कौन कौन सी ज्यादतियाँ हैं जिनके लिए कानून मौजूद हैं?
इसके अलावा रेप के बारे में लॉ है हमारा, और इसके अलावा हमारा सेक्शन 389A है, 377A है, 377B है पाकिस्तान पीनल कोड के। तो इन सब के जैसे कि हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो है चाइल्ड अब्यूज अमेंडमेंट एक्ट अभी दोबारा इसके अंदर आ रहा है, जिसमें 18 इयर्स एज ऑफ कॉन्सेंट 18 इयर्स रखी गई है। किसी भी बच्चे से जैसे जबरी शादी ना करा सके, 18 साल से पहले एज ऑफ कॉन्सेंट 18 इयर्स है। और ये एक्ट है ये 377A जिसके तहत किसी भी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं किया जा सकता काम के लिए, किसी बच्चे को जबरदस्ती शादी के लिए, निकाह के लिए नहीं किया जा सकता। तो पीनल कोड इसको पूरी तरह से कवर करती है।
तो फिर क्या उनकी सजाएं क्या हैं अगर कम उम्र में शादी हो जाती है, ये जबरी शादियां करते हैं बच्चों की या बच्चियों की? तो
इसमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है पीनल कोड का, जिसमें 18 साल की उम्र रखी गई है के बच्चे की कॉन्सेंट पूछ के उसकी शादी करें। लेकिन हमारे यहाँ देहातों में, गांव में, इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, हमारे बलूचिस्तान में बच्चों की जबरदस्ती उम्र से पहले, मेच्योरिटी से पहले शादी कर दी जाती है और इस चीज की कोई रिपोर्ट नहीं होती। इस पे बहुत हैवी पेनल्टी है, इस पे हमारे इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन आप अगर खोल के देखें हमारे केस रिपोर्ट्स तो हमें हार्डली कोई कंप्लेंट मिलती है।
बेहद शुक्रिया सुमैरा रज़ा साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप एक लीगल कंसल्टेंट हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ वाबस्ता हैं। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/urdubioa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urdubioa पर हमें फॉलो कीजिए।
इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज का खसूसी शो खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है, आप अभी सुन रहे थे खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए